ऑप्शन थे 23 अक्टूबर 1999। जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहां भी हो जाएगा। 8 घंटा के सेवाधारी 6 घंटे के सेवाधारी निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे, चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, अर्थात संबंध संपर्क से। 1 सेकेंड दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे, दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना? या आप आगे रहो हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं ना, साथ का वायदा है ना? तो बाप सेवा के बिना रहता है? याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता है उतना आप मेहनत से रहते हो, रहते हैं लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या? परमात्मा के लिए है ही आत्माएं, नंबरवार आत्माएं तो है ही, सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? आप रह सकते हो? कभी कभी नटखट हो जाते हो। October 1999 की मुरली है। जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएंगे। 8 घंटे के सेवाधारी 6 घंटे के सेवाधारी निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे, चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म द्वारा संबंध संपर्क से। हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे, दिल को साफ सदा रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे और चलेंगे, है ना वायदा? या आप आगे रहो हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं ना, साथ का वायदा है ना? तो बाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता है आप मेहनत में रहते हो, रहते हैं लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या? परमात्मा के लिए है ही आत्माएं, नंबरवार आत्माएं तो है ही, सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? आप रह सकते हो? कभी कभी नटखट हो जाते हो। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से सेवा करो, चाहे कर्म, चाहे संबंध संपर्क, 1 सेकेंड दाता अर्थात सेवाधारी। 1 सेकेंड में क्या करना है? दाता बनना है। कल की मुरली में 1 सेकेंड में 2 बातें करने के लिए कही थी, कौन सी? एक तो 1 सेकेंड की दृष्टि से सृष्टि, और दूसरा दूसरा कल की मुरली में 1 सेकेंड में 2 बातें करने के लिए कही थी। एक तो 1 सेकेंड में दृष्टि थी और सृष्टि हो गई। वो लोग 15 सेकेंड लगाते हैं, आप 1 सेकेंड लगाओ। उनका है विनाश का कार्य, आपका है स्थापना का कार्य। ऐसी स्पीड टेस्ट करने के लिए अपनी स्टेज को पावरफुल करो, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल स्टेज में रहो। तो 1 सेकेंड में दृष्टि से सृष्टि, और 1 सेकेंड में बोला है वहाँ एक परम धाम, सबसे दूर कौन सा स्थान है? सबसे दूर कौन सा स्थान है? परम धाम। तो वहां जाने के लिए दूर भले है, परंतु जाने के लिए 1 सेकेंड भी नहीं लगता। तो ये ड्रिल है, 1 सेकेंड में परम धाम चले जाना और आ जाना, सीधा जंप छलांग कूद के सीधा परम धाम में पहुंच जाना, और फिर कूद के वापस धरती पर आ जाना अपनी देह में। तो 1 सेकेंड दाता अर्थात सेवाधारी। तो दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे, और दूसरा दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। तो दिमाग खाली और दिल साफ, दो काम करने हैं। दिमाग को खाली कर देना और दिल को साफ, क्लियर द माइंड क्लीन द हार्ट, दो काम करने हैं। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन जाएंगे और दिमाग को सदा खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन जाएंगे। दिल को साफ करना है और दिमाग को खाली। और कल क्या कहा था, गिफ्ट कौन सी दो? क्लियर, सदा क्लियर और केयरफुल, ये दो बातों की गिफ्ट लो। गिफ्ट दो, क्लियर कर देना स्वयं को, और आज कहा क्लीन कर देना, माइंड को खाली कर देना। ये कार्य कैसे करेंगे, और उससे भी पहले किन बातों से मन को क्लीन कर देना है, या दिमाग को खाली करना है, या क्लियर कर देना है, कौन कौन सी चीजें हैं। जब तक वो नहीं होगा, नहीं खाली किससे करना है, वो तो गिफ्ट दूसरी है लेने वाली, वो दूसरा पॉइंट है। किन बातों से मन को, दिमाग को खाली करना है और दिल को क्लीन करना है या क्लियर करना है, वो भी सदा क्लियर। सदा क्लियर कर दो तो तीन बातें हो जाएगी कल की मुरली से, चीयरफुल बन जाएंगे एक, दूसरा एकरस हो जाएंगे दो, तीसरा भी है क्या, डिप्रेशन। एक शब्द जो बार बार बोलते हो, डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, वो नहीं रहेगा। इस वर्ष का विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो थीम है 2017 का, 7 तारीख के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, थीम है डिप्रेशन, लेट्स टॉक। पूरे वर्ष भर विश्व स्वास्थ्य संगठन, कोई देश नहीं, एक देश नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेन थीम सारे वर्ष भर है के लिए है डिप्रेशन, लेट्स टॉक। डिप्रेशन दबा हुआ है अंदर, लोग बोलते नहीं उसके बारे में, रिसोर्सेस नहीं है, शायद जानकारी नहीं है, उसका शायद एक सोशल स्टिग्मा जैसे कलंक है, वो कोई बोलता नहीं है मुझे डिप्रेशन है, अंदर ही अंदर डिप्रेशन रहता है, अवसाद विषाद दुख, परंतु बोलते नहीं है। इसके लिए थीम ही दिया है डिप्रेशन, लेट्स टॉक, डिप्रेशन के बारे में बोलो। 350 मिलियन लोग, 35 लाख लोग दुनिया भर में डिप्रेशन के शिकार है, इसलिए इस वर्ष का थीम रखा गया है डिप्रेशन, लेट्स टॉक। तो यदि हार्ट क्लीन है, क्लियर कर दो, सदा क्लियर कर दो, तो एक रस रहेंगे, चीयरफुल रहेंगे, और जो एक शब्द बार बार बोलते हो डिप्रेशन डिप्रेशन, वो नहीं होगा। तो ऐसी तीन बातें हो जाएगी, परंतु क्या करना पड़ेगा, दिमाग को खाली और दिल साफ, क्लियर कर दो स्वयं द्वारा, बाप दादा द्वारा, निमित्त आत्माओं द्वारा क्लियर कर दो। डी क्लटर द माइंड, शिवानी बहन अपने क्लासेस में कहती है डी क्लटर द माइंड, माइंड में इतना जो कचरा भरा है, क्लटरिंग जो हुआ है, उसको डी क्लटर करो, डी क्लटर द माइंड। तो किन चीजों को खाली करना है मन से, हम सोच रहे थे कल जब वो मुरली पढ़ रहे थे, बाबा ने कितने बार सी शब्द का प्रयोग किया है, एक जगह कहा क्लीन क्लियर करो, दूसरी जगह कहा है केयरफुल, तीसरी जगह कहा है चीयरफुल, 3C का प्रयोग किया है। अगर सी एक शब्द को लो तो उससे कम से कम ऐसे 10-12 दिव्य गुण कहो या शब्द बनते हैं। सबसे पहला तो तीन चीजें जो कल बताई उसके भी पहले है क्लीन, सी फॉर क्लीन, सी फॉर फिर क्लियर, फिर केयरफुल, फिर चीयरफुल, फिर है केयर फ्री। एक है केयरफुल तो बाबा ने बोल दिया, एक दूसरा है केयर फ्री, बेफिक्र, केयरलेस नहीं, केयरलेस अर्थात लापरवाही, आलस अलबेलापन, केयरलेस नहीं, केयर फ्री, केयर फ्री एम्परर, तुम बेफिक्र बादशाह हो, क्रिएटिव, सी फॉर क्रिएटिव, सी फॉर केयर फ्री, सी फॉर कोऑपरेशन, सी फॉर चैरिटी, सी फॉर कंटेंटमेंट, सी फॉर करेज, सी फॉर केयर केयरिंग, सी फॉर केयरिंग, सी फॉर कंबाइंड, सी फॉर क्राइंग प्रूफ, सी फॉर क्राइंग प्रूफ, सी फॉर क्राइंग, रोना, और बस हो गए, बोल दिया, क्वेश्चन हो गया, वो केयर में, केयरफुल में आ गया क्वेश्चन, इसके लिए उसको उसके साथ ही डाल दो, कंटिन्यूटी, कम्युनिकेशन, कंबाइंड बोल दिया, तो सब सी से संबंधित, उसमें से अलग अलग मुरलियों ने, बाबा ने अलग अलग शब्द लिए हैं, तो सी क्लियर, यहां पर क्लीन आज के पैराग्राफ से, केयरफुल कल से, चीयरफुल कल के से, तो फिर से उसी प्रश्न पर आना है, क्या कर दो दिमाग को खाली और दिल को साफ, सदा साफ, करेक्शन, चेकिंग, चेक एंड चेंज, कनेक्शन, कनेक्टिविटी, 4G कनेक्टिविटी, सुशील भाई ने बताया था 4G, याद है सबको, पहला जी कौन सा था, ज्ञान, दूसरा जी था गुड विशेस, तीसरा जी था गॉडली लव, और चौथा जी था, अरे सुना है ना अभी अभी क्लास, जी कौन सा था चौथा, जनरेशन, जनरेशन तो बीच में बताया था उदाहरण, जनरेशन थोड़ी था, जनरोसिटी नहीं, सुशील भाई ने जो क्लास कराया था अभी अभी उसकी बात पूछ रहे हैं। पहला तो था ज्ञान, गॉडली लव, गुड विशेस, और चौथा चौथा गोल, सुशील भाई गोल था ना, तो सी फॉर कनेक्टिविटी, 4G कनेक्टिविटी, किन बातों से माइंड को खाली करना है, क्लीन कर दो, बाबा ने कहा कल मुरली में, क्लीन कर दो माइंड को, क्लियर कर दो, क्लीन कर दो, क्लियर कर दो, सब लगभग आसपास है सारे, क्लीन कर दो अर्थात प्यूरिटी से संबंध है, क्लियर कर दो अर्थात साफ कर दो, उसको हटा दो वहां से, कचरा जो भी है, झाड़ू से करो या किससे भी करो पर कर दो, तो कामनेस और कूलनेस, कूलनेस और कामनेस, यही एक बचा था, एक कैंडिड भी होता है, पर कैंडिड अर्थात फ्रैंक, स्पष्टवादी था तो वो भी, परंतु वो नाउन इतना प्रयोग नहीं किया जाता है इसलिए तो किन बातों से माइंड को क्लियर करें, बाबा ने कहा सदा क्लियर कर दो तो एक रस हो जाएंगे, चीयरफुल रहेंगे, डिप्रेशन शब्द नहीं बोलेंगे, क्लियर करना है तो उन बातों की चर्चा करेंगे, क्लियर अगर न किया जाए तो भारीपन रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग अपने से, निमित्त आत्माओं से और बाप दादा द्वारा, जैसे कल कहा था कि अपने से क्लियर करना तो भी आसान है, बाबा से भी आसान है, निमित्त थोड़ा मुश्किल, और दूसरी फिर सर्व आत्माएं भी जोड़ दो उसके साथ, उनसे भी क्लियर हो जाए। कौन सी बातें क्लियर करेंगे? पहला है गिल्ट कॉम्प्लेक्स, अपराध भाव, हमने पाप किया है, हम दोषी हैं, गिल्ट है। मन इससे इतना भारी है कि जो माइंड गिल्ट से दबा हुआ है इस ग्रंथि से, वो क्या पुरुषार्थ करेगा और क्या आगे बढ़ेगा और दूसरों को कैसे प्रेरित करेगा? माइंड जब तक पूर्ण रीति से गिल्ट कॉम्प्लेक्स से मुक्त नहीं हो जाता, अपराध भाव, अपराध बोध, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत भारी है उसका वजन जो है गिल्ट का, इतना भारी कर देता है कि मुश्किल है कोई भी पुरुषार्थ ज्ञान योग से संबंधित होना। इसके लिए सबसे पहला तो सुनाकर, पहले तो स्वयं स्वयं की फीलिंग्स में जो गिल्ट है उसको पकड़ लेना, क्या गिल्ट है, किस लिए गिल्ट फीलिंग आ रही है। चलो किसी ने बहुत बड़ी गलती भी कर दी है, परंतु यदि उस गिल्ट फीलिंग से ग्रस्त है तो ये दूसरी गलती है, क्योंकि वो फीलिंग के होते पुरुषार्थ नहीं हो सकता, वो भारीपन कैसे पुरुषार्थ करने देगा। हम दूसरों समझाते हैं ज्ञान में और योग के प्रयोग भी करते हैं कि सर्व आत्माओं को माफ कर दो, पर क्या हमने अपने आप को माफ किया है? उसके लिए अपने आप को माफ करने के लिए स्थिति ऊंची चाहिए थोड़ी, और वो ज्ञान और योग से ही बनेगी। इस संसार का कोई मनुष्य हमारी मदद नहीं कर सकता इस बात में, हमें सबसे पहले माफी स्वयं स्वयं को करनी है। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि मेरे जैसा पापी कौन, अनगिनत मेरे पापी पाप है, हे प्रभु मेरे जैसा पापी संसार में कोई नहीं है, पर तेरे जैसा दयावान भी तो नहीं है, तेरी कृपा भी तो अपरंपार है। अगर मेरे पाप अपरंपार है तो तेरी कृपा, दया सिंधु, कृपा सिंधु, ओशन ऑफ मर्सी, अल रहमान अल रहीम, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, कोमल चित अति दीन दयाला, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला। हे राम तू बिना कारण के कॉजलेस मर्सी है तेरी, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, ऐसा वो दया सिंधु कृपा सिंधु है। परंतु इतना करेज चाहिए बता देने के लिए कि ये पाप मुझसे हुआ है, ये पाप मुझसे हुआ है, जो भी है जैसा भी है हुआ है, अब उसको क्या किया जा सकता है, और उस गिल्ट से मुक्त हो जाना। क्योंकि कहा ना, वो जो गिल्ट है वो एक दूसरी बड़ी गलती है, वो तो गलती थी पर ये उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी गलती है जो आगे नहीं बढ़ने देगी आत्मा को। इतना भारी बोझ छाती पर पत्थर रखा है और कह रहे करो तपस्या बैठकर, गिल्ट। दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग, दूसरा है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग से अपने हृदय को स्वच्छ करना है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने बीच, अपनी अपनी भावनाओं में ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, अपने ही फीलिंग्स में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको देखना, फिर दूसरों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उनके साथ क्लियर कर देना। अगर क्लियर न की जाए तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये गलत स्वामी, मिथ्या बोध बढ़ते जाता है, अनुमान पर अनुमान लगाए जाते हैं। हमको तो लगता है दूसरे समझ जाएंगे, परंतु दूसरे की अपनी लिमिटेशंस है, उसकी बुद्धि की। जरूरी नहीं है कि हरेक की बुद्धि इतनी कुशाग्र है, जरूरी नहीं है कि हमारे आध्यात्मिक भावों को दूसरे समझ पाए। आध्यात्मिक भाव जो होते हैं इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें समझा नहीं जा सकता है। बहुत सूक्ष्म होते हैं। एक व्यक्ति है जो पागलों जैसे कर रहा है, लोग उसे पागल समझते, पर हो सकता है वो बहुत ऊंची आध्यात्मिक स्थिति में है। लोगों ने फकीरों को ऐसे ही पत्थर नहीं मारे, परंतु वो सारे ऐसे फकीर थे कि जिनकी स्थिति बहुत बहुत ऊंची थी, बहुत ऊंची, जो वहां के आसपास के लोग उन्हें समझ ही नहीं पाए। सदियों के बाद, मरने के बाद, उनको मार देने के बाद लोगों ने 100 साल के बाद समझा। जैसे मंसूर चिल्लाता रहा, अनल हक अनल हक अनल हक, मार दिया उसको, एक एक टुकड़े टुकड़े करके बहुत बेदर्दी से मारा, हाथ काटे पैर काटे, बहुत ही तड़पा तड़पा के मारा। अपराध क्या था उसका, लोग नहीं समझ पाए उसको। तो आध्यात्मिक भाव जो होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं। हम ये समझे कि हमारे आध्यात्मिक भावों को दूसरा समझ जाए, संभव नहीं। कभी कभी अपनी ही स्थिति से नीचे आकर उनको समझाना पड़ेगा, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग ये बढ़ता जाएगा, दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग, तीसरा सूक्ष्म घृणा नफरत और बदले का भाव, डीक्लटर द माइंड, जेलसी, हेट्रेट, रिवेंज, फुल एटीट्यूड। जब तक यह सूक्ष्म घृणा नफरत और बदले का भाव है किसी आत्मा के लिए, संपूर्ण नहीं बना जा सकता। इससे भी क्लियर करना है। चौथा, सेल्फ विक्टिमाइजेशन। सेल्फ विक्टिमाइजेशन, स्वयं स्वयं को दोषी समझना हर चीज के लिए। मेरे कारण हुआ है, मेरे कारण हुआ है, ये सेवाओं में विघ्न मेरे कारण आ रहे, मैं ऐसा हूं, पुअर मी सिंड्रोम, PMS, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन ग्रंथि है। स्वयं के लिए कोई बड़े विचार नहीं है, दूसरे ने थोड़ा भी कुछ कह दिया तो डाउन, और फिर उसमें इस तरह के विचार, और मैं हूं ही ऐसा शायद। पांचवा, सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इससे भी, ये भी एक ग्रंथि है, कॉम्प्लेक्स है ये। इस ग्रंथि से वरीयता का, उच्चता का भाव, कि हम, आई एम ग्रेटर देन यू का एटीट्यूड, मैं तुमसे बड़ा हूं, यह भाव। सातवा, ब्लेम गेम। कितना, छठवा, ब्लेम गेम। ब्लेम गेम, ब्लेम गेम अर्थात लेन देन नहीं, ब्लेम गेम, आरोप प्रत्यारोप, आरोप लगाना, जीवन में, मेरे जीवन में ये हुआ ना, उसके वजह से हुआ, ये जो हुआ उसका कारण ये व्यक्ति है। ब्लेम गेम, ये गेम है, ब्लेम गेम जिसको कहते हैं, ब्लेम गेम अपने आप में अलग शब्द है, ब्लेम गेम। ये ब्लेम गेम, कोई भी डिबेट, कोई भी मीटिंग होती है उसमें ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोपण करना, दूसरों को दोषी ठहराना, दूसरों के दोष निकालना, छिद्रान्वेषण, नुक्ताचीनी, वो सारा करना, दैट इज नोन एज ब्लेम गेम। इस ब्लेम गेम से अपने आप को डीक्लटर कर दो, डीक्लटर द माइंड। इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं है, ये उसका एंटीडोट, ये उसका दूसरा विरोधी भासी संकल्प है। इस ड्रामा में जब कोई निर्दोष है तो हम किसको ब्लेम दे रहे, किसके वजह से ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो होना ही था। आत्माएं पार्ट प्ले कर रही है, अपने अपने एक्टर से, सभी सबका अपना अपना पार्ट है, हम किसको ब्लेम करें, उसके वजह से मेरे जीवन में ये घटना हुई है, उसके वजह से मैं दुखी हूं, उसके वजह से मैं परेशान हूं। यह भाव कि कोई मेरी परेशानी का मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूं, किसी के वजह से मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं खुद, मेरे, मैं और मेरे कर्म है, वो कर्म ही व्यक्तियों के रूप में कर्म भोग बन रहे हैं, बीमारी के रूप में, परिस्थितियों के रूप में, दोष उनका नहीं है, सभी निर्दोष है। ये एक संकल्प ही हमें उस ब्लेम गेम से मुक्त कर देगा। सातवा, अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट। एक व्यक्ति से इतना लगाव है, इतना लगाव है, इतना लगाव है, वो कोई भी हो सकता है, फिर लौकिक संबंधी, अलौकिक संबंधी, लौकिक के तो मोह नष्ट हो गया, अलौकिक संबंधियों में अलौकिक संबंधी बनाते हैं, इस अलौकिक परिवार में भी किसी से भी मोह नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, है सबके बीच में, कर रहे सबकी सेवा सबके साथ, परंतु निर्लिप्त, अलिप्त, इंटैक्ट, अनटच्ड, अनइन्फ्लुएंस्ड, किसी से कोई लेना देना नहीं है। मन की ऐसी अविकल्प स्थिति, निर्विकल्प स्थिति है सबके बीच में, परंतु कोई लेना देना नहीं। अंदर से ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ये योगी की अवस्था है। कबीरा खड़ा बाजार में, किसी से ना दोस्ती है ना ही किसी से बैर, सभी दोस्त है और सभी दोस्त है, अर्थात कोई भी शत्रु भी नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं, या तो सारा विश्व हमारा दोस्त है या कोई भी नहीं, ऑल एंड ऑल और नन। आठवां, वेस्ट और निगेटिव, आठवां वेस्ट और निगेटिव से मन को मुक्त करना है। ये डायग्नोसिस करना कि मैं वेस्ट में हूं, अपना ही डायग्नोसिस, सेल्फ डायग्नोसिस। कौन करेगा हमारा डायग्नोसिस? दूसरे करेंगे तो हम गुस्सा होंगे उसके ऊपर, तुम ही हो, तुम में होगा, हम में नहीं है। दूसरा हमारा डायग्नोसिस करने आ जाए कि तुम आजकल थोड़े ज्यादा व्यर्थ में हो, तो हमारी रिएक्शन क्या है? अपने को देखो पहले, तो इतनी बड़ी रिस्क लेके उसने हमें बताया है। कितनी बड़ी रिस्क लेना है दूसरों को बताना किसी का दोष? बहुत बड़ी रिस्क है। हमारी तो शुभ भावना है, शुभ भावना ने हमें रिस्क लेने पे मजबूर किया कि बेचारा व्यर्थ में जा रहा है, हम उसे समझाए, और जैसे ही समझाया एलर्जिक रिएक्शन हुआ जबरदस्त। वो हमको तो बहुत बड़ी रिस्क है दूसरों को उसकी गलती बताना, माना कितनी भी शुभ भावना भी हो, परंतु बताना मतलब उसके क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। हाँ, संबंध बिगड़ने की रिस्क है, बहुत बड़ी रिस्क है। इसके लिए मन में भाव तो बहुत उठते हैं कि बेचारे छूट जाए इस व्यर्थ से, पर कैसे उनको समझाए, कैसे उसको बताए? सोचते हैं फिर चुपचाप बैठ के कमरे में सकाश दे दो, ठीक है देवेंद्र भाई, अगर किसी को बता दो भाई तुमको योग में ज्यादा नींद आती है, तुम सो रहे थे आज सुबह। कितनी बड़ी रिस्क है बताने में, संबंध बिगड़ेंगे, नाराज होगा, और बाद में फिर हमें अगर कभी नींद आ गई तो फिर तो वो छोड़ेगा नहीं। बोलेंगे ज्ञान तो बहुत सुनाते हो और योग में सोते हो। ज्ञान तो बहुत सुनाते हो, साधनों का आधार नहीं लेना है, और यहां अपने फोटो निकाल रहे हो, बहुत बड़ी रिस्क है। तो आठवां है डीप अटैचमेंट, नौवां है सॉरो, दुख, अपने हृदय को दुख से मुक्त करना है। कहीं ना कहीं दुख का कांटा गड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है वो दुख, कहां का भी दुख का स्रोत जो है वो कुछ भी हो सकता है, परंतु है एक गहरा दुख, एक गहरा दुख, केवल एक, कहीं ना कहीं गड़ा है, और वहां से टप 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 खून बहता है, कभी 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 आंसुओं के द्वारा आंखों से। दसवां, डिप्रेशन, उदासी, अवसाद, रंज दिली। रंज दिली, इस अवसाद से, अवसन्नता से स्वयं को मुक्त करना, इस डिप्रेशन से। क्या कॉज है डिप्रेशन का, क्यों डिप्रेशन है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो सभी ग्रंथियों से क्लीन द माइंड, डिक्लटर द माइंड, दिमाग को खाली करो, दिल को साफ करो, और सदा क्लीन कर दो अपने आप से, अपने द्वारा, बाप दादा द्वारा, और निमित्त बनी हुई आत्मा द्वारा। कर देंगे? आसान काम है कि कठिन काम है? वही पढ़ा है। क्लीन करने की मेथड है, पहले वो स्पष्ट हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आंखों के सामने स्पष्ट चाहिए। अभी बीमारी है, कोई आया है कहता है बीमार हूं, अरे कौन सी बीमारी है पता ही नहीं, और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट चालू कर दिया, बीमारी पता ही नहीं क्या है, और फिर बाद में पता चला 2 महीने के बाद, अरे ये तो टीबी था, हम तो कुछ और ही ट्रीट कर रहे थे, रॉन्ग डायग्नोसिस हो गया। ऐसा ना हो जाए, अपनी बीमारी का हमें डायग्नोसिस खुद करना है। दूसरा करके दे भी देता है कभी कभी, रिस्क उठाकर, अपनी सब प्रकार की रिस्क उठाकर कभी कभी कर भी देता है डायग्नोसिस, फिर भी सेकेंड ओपिनियन चाहिए हमें, ये डॉक्टर ठीक नहीं है बड़े डॉक्टर के पास जाना चाहिए अनुभवी नहीं है, इतना कम अनुभव है। तो दूसरों का दिया हुआ रेडीमेड डायग्नोसिस नहीं चाहिए, हमें खुद स्वयं को ठीक करना है, स्वयं का डायग्नोसिस करना है, विकारों का डायग्नोसिस करना है। तो पहला कौन सी बात बताई, गिल्ट, सेकंड मिसअंडरस्टैंडिंग, थर्ड घृणा नफरत बदला, चौथा सेल्फ विक्टिमाइजेशन, पांचवा इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, छठवा ब्लेम गेम, सातवा अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट, आठवा वेस्ट निगेटिव, अगला सौरो, अगला उदासी, अवसाद। ओम शांति।